दिन भर 31 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के 8 कार्यकर्ता पुलिस एनकाउंटर में मारे गए।
लोगों से जो सूचना मिली उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई और बाद में मुठभेड़ में भी मारे गए। जेल से आतंकवादियों का फरार होना अपने आप में बहुत गंभीर घटना है।
बात करेंगे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से। इराक की सेना ने मोसूल की तरफ अपना मार्च फिर शुरू किया। होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। मध्य प्रदेश की भोपाल जेल से आज तड़के भागे 8 कैदियों को पुलिस ने शहर के बाहर ईटखेड़ी क्षेत्र में एक कथित मुठभेड़ में मार दिया। पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े ये कैदी एक सुरक्षा गार्ड की गला रेतकर हत्या कर चादरों की रस्सी बनाकर जेल से भागे थे। इस मुठभेड़ पर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस चरमपंथी घटना की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए से जांच कराने का आग्रह किया है। तुर्की में पुलिस ने सरकार की आलोचक और देश के बड़े अखबार जमहूरियत के प्रमुख संपादक मूरत साबूनकू और कम से कम 12 वरिष्ठ कर्मचारियों को चरमपंथ के आरोप में हिरासत में लिया है। इन सभी पर प्रतिबंधित कुर्द लड़ाके समूह पीकेके और फेतुल्ला गुलेन से संबंध का आरोप लगाया गया है। जुलाई से अब तक 170 मीडिया संस्थानों को बंद और 100 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तुर्की में सिविल सोसाइटी संस्था P24 प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करती है। संस्था के संपादक एंड्रयू फिनकेल ने इस्तांबुल में बीबीसी से कहा कि सरकार हर विरोध को खामोश करने के लिए तख्ता पलट को एक बहाना बनाकर इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ इसी हफ्ते में 15 मीडिया संस्थान बंद हो गए हैं और संख्या के लिहाज से तुर्की में 15 जुलाई को तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद ये एक बड़ी संख्या है। सरकार का कहना है कि वो तख्ता पलट की कोशिश के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ रही है, लेकिन जमहूरियत अखबार के बारे में ये मानना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि तुर्की की अति सेकुलर प्रतिष्ठान का एक हिस्सा गुलेन आंदोलन के पीछे रहा हो या तख्ता पलट की कोशिश में शामिल हो, लेकिन साफ तौर पर यह विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। एंड्रयू फिनकेल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मध्य इटली में 3 महीने के अंदर चौथी बार आए भूकंप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हजारों लोग रातें कारों, टेंट और अस्थायी आवासों में बिता रहे हैं। रविवार को आए 6.6 तीव्रता के इस भूकंप में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। नागरिक सहायता अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक 40,000 लोगों को राहत पहुंचाई है। प्रधानमंत्री मैटियो रेंजी ने पुनर्निर्माण के बारे में चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई है। भूकंप के बाद आने वाले झटकों से इमारतों का गिरना जारी है। यह भूकंप उस इलाके के पास आया है जहां अगस्त में आए भूकंप में करीब 300 लोग मारे गए थे। नोरचा में संत बेनेडिक्ट के मध्यकालीन बेसिलिका समेत कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इराकी शहर मोसुल में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से लड़ाई लड़ रही इराकी सेनाएं शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर तक पहुंच गई हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाहर जेल से भागे 8 सिमी कार्यकर्ताओं को एक एनकाउंटर में मार दिया गया है। मुठभेड़ के बाद अब प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की जांच एनआईए से करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है। भागने से पहले इन 8 सिमी कार्यकर्ताओं ने एक जेल कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। पेश है भोपाल से शुरेनियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल की सेंट्रल जेल से रविवार और सोमवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे सिमी के 8 कार्यकर्ता एक जेल प्रहरी रमाशंकर की हत्या करके जेल से फरार हो गए। ये घटना उस वक्त की है जब प्रहरियों की ड्यूटी बदली जा रही थी। जानकारी के मुताबिक सिमी के इन कैदियों ने चादरों का इस्तेमाल रस्सी के तौर पर किया और जेल की लगभग 40 फीट ऊंची दीवार से कूद कर भाग गए। इनमें कुछ वो भी शामिल थे जो 2013 में खंडवा जेल से भागे थे। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। रात में हुई घटना के बाद भोपाल एसपी अरविंद सक्सेना ने बताया,
8 जो आरोपी थे तो उनके विषय में जो ज्ञात हुई जानकारी, तो उसमें करीब 2 बजे की घटना है। रात को 2 से 2:15 बजे के बीच में जब प्रधान रक्षक जो थे रामाशंकर यादव, उनसे चेंज करने के लिए एक दूसरे जेल प्रहरी जब जा रहे थे पहरा, तो उस समय दोनों को मतलब ओवर पावर कर लिया इन लोगों ने। और उसके बाद जो है सेल्स जो थी बी ब्लॉक की, वहां के ताले वगैरह खोल लिए, और ताले खोलने के बाद फिर इन्होंने जो है एक चादर नुमा सीढ़ी बनाई है, मतलब लकड़ी की जो है, उससे ये जो बड़ी जेल, जो जेल की बड़ी दीवार रहती है जो आउटर पेरिफेरी की, उसको लांघ कर फरार हो गए हैं।
घटना के बाद भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था ताकि ये लोग भाग न सकें। उसके बाद पुलिस ने इन सीमी कार्यकर्ताओं को शहर के बाहर ईंट खेड़ी इलाके में घेर कर मार दिया। घटना के बाद आसपास के गांव के लोगों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना के बाद सुबह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने जेल के 5 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया था, लेकिन मुठभेड़ में मारे जाने की खबर के बाद शिवराज सिंह चौहान स्वयं मीडिया के सामने आए और बताया,
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की हमारी टीम सक्रिय हुई और प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जनता के सहयोग से, मैं जनता को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि लोगों से जो सूचना मिली उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई और बाद में मुठभेड़ में भी मारे गए। जेल से आतंकवादियों का फरार होना अपने आप में बहुत गंभीर घटना है।
इस घटना के सामने आने के बाद सुबह प्रदेश के जेल के प्रमुख सचिव विनोद सेमवाल ने माना कि घटना बताती है कि जेल के लोग सीमी कार्यकर्ताओं से मिले हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। इन सीमी कार्यकर्ताओं पर अलग अलग मामलों में केस चल रहे थे, लेकिन इस मुठभेड़ ने कई सवाल भी पैदा कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस सहित कई लोग देश की इस सबसे सुरक्षित जेल से कैदियों के भागे जाने पर हैरान हैं। इस जेल के अंदर न सिर्फ सीमी कार्यकर्ता बल्कि कई नक्सलवादी भी मौजूद हैं। अबू सालेम भी इस जेल में रहे हैं। वहीं पूरे जेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसके अंदर से चादर के जरिए दीवार फांद कर भाग जाने पर सभी को अचरज हो रहा है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी न मिल पाए। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
भोपाल के पास आज तड़के जेल से कथित तौर पर फरार हुए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के 8 सदस्यों के मारे जाने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारी इस पर बहुत कुछ कहने से बच रहे हैं। विनीत खरे की रिपोर्ट।
पुलिस ने कहा है कि ये 8 लोग एक मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन विपक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस के दावों पर सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि 8 लोगों का दीपावली की रात फरार होना और फिर भोपाल के पास ही 8-9 घंटे तक छिपे रहना शक पैदा करता है। वो सवाल पूछते हैं, हाई अलर्ट के दौरान 35 कथित चरमपंथियों को रखे जाने वाली जेल की सुरक्षा मात्र 2 सिपाहियों के भरोसे क्यों, कैसे और किस लिए रखी गई? कुछ वर्ष पूर्व कथित सिमी कार्यकर्ताओं के खंडवा जेल से फरार हो जाने की घटना से भी सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया? जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी जेल में 8 से अधिक दुर्दांत अपराधियों को नहीं रखा जाना चाहिए, तो राजधानी की जेल में एक साथ 35 लोगों को क्यों रखा गया? फरार हुए लोगों को आधुनिकतम हथियार कहां से और किससे प्राप्त हुए? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या ये लोग सरकारी जेल से भागे या फिर किसी योजना के तहत भगाए गए। हालांकि भाजपा नेता आर के सिंह ने इसे विकृत सोच बताया है। एमआईएम नेता असदुद्दीन अवैसी सवाल उठाते हैं।
ये सभी लोग पूरे कपड़े पहने हुए थे, उनके पांवों में जूते थे, कलाई में घड़ी और बैंड थे, उन्होंने बेल्ट पहनी हुई थी। अंडर ट्रायल को ये सब चीजें नहीं दी जाती।
उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्होंने ये बातें मृत व्यक्तियों की मीडिया पर दिखाई गई कथित फुटेज के आधार पर कही। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार और सरकारी अधिकारियों की ओर से आए बयानों के बावजूद कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। क्या 35 से 40 फीट दीवार को चादर की मदद से फांदा जा सकता है और क्या ये चादरें इतना वजन उठा सकती हैं? एक ही बैरक में सभी अभियुक्तों को साथ क्यों रखा गया? अगर अभियुक्तों को भागना था तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की ओर जाना चाहिए था, न कि ऐसे इलाके में जो गांव है। कथित मुठभेड़ के दौरान इन अभियुक्तों के पास कैसे हथियार थे? वो हथियार आखिर कहां से आए और क्या इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी? विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
एनकाउंटर पर सवाल। विनीत खरे ने ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की और पूछा कि पुलिस के अनुसार भागने वाले कैदियों के पास हथियार थे, ये हथियार उनके पास आए कैसे?
पूरा डिटेल ब्रीफिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है और उसमें सारा डिटेल बताया गया है, जो जो हथियार थे और जो उनके द्वारा गोली चलाई गई है, जो पुलिस को जो भी चोट आई है, वो सारा है उसमें।
सर आपसे मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ ना कि आप जो है गृह मंत्री हैं सर, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। पुलिस तो अपनी ब्रीफिंग देती रहेगी, आपकी क्या टेक है?
हम लोगों ने इसके लिए पुलिस को ही ऑथराइज किया हुआ है ब्रीफिंग के लिए, वो ही सारा ब्रीफ करेंगे घटनाक्रम, चूंकि वो सारा घटनाक्रम मौके पे थे तो वो उनके द्वारा ही ब्रीफिंग होगी।
लेकिन एक सवाल एक ये भी है कि ये जो 35 से 40 फीट लंबी दीवार है उसको फांद कर कैसे चले गए, क्या चादरें इतना वजन उठा सकती हैं, इस तरह के जो सवाल हैं वो फिर कौन देगा?
हाँ नहीं, उसका देखिए जेल, पहली चीज तो जेल डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है।
दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन लोगों को भगाया गया कि ये खुद भागे।
नहीं देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आतंकवादी थे, ये पहली बार जेल से नहीं भागे हैं, दूसरी बार जेल से भागे।
भूपेंद्र सिंह जी, अभी मुकदमा चल रहा था, अभी उनके ऊपर फैसला नहीं आया था।
नहीं, पहली बार जेल से तो भागे थे, ये तो मामला था ही उनका जेल से।
MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी वो सवाल उठा रहे हैं कि जो वीडियो आया है एलिजेडली एनकाउंटर का या फिर जो मुठभेड़ का, उसमें ये सभी लोग पूरे कपड़े पहने हुए हैं, उनके पाँव में जूते हैं, कलाई में घड़ी और बैंड है, बेल्ट पहनी हुई है, और जो अंडर मतलब ट्रायल होते हैं तो उनको ये सब चीजें नहीं दी जाती, वो कह रहे हैं। और
इसका मतलब तो ओवैसी जी का गार्ड को भी हम ही लोगों ने मार दिया, जो हमारा पुलिस का गार्ड है, इसका मतलब तो उनके अनुसार तो हम ही लोगों ने मार।
नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे सर, वो कह रहे हैं इसकी जाँच होनी चाहिए कि एक अंडर ट्रायल के पास सब चीजें।
क्या जाँच हो इससे क्लियर ज्यादा और क्या होगा कि गार्ड का मर्डर किया, जिस बैरक में बंद थे उस बैरक से भागे।
फेक एनकाउंटर जो कहा कुछ लोग कह रहे हैं, वो फेक एनकाउंटर की बात पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे?
नहीं देखिए, सारा एनकाउंटर का पूरा जो डिटेल है वो पुलिस ब्रीफिंग में पुलिस दे रही है, उस पे पुलिस ही बोलेगी, हम लोगों का बोलना उचित नहीं।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात कर रहे थे विनीत खरे। इस बीच अब से थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी योगेश चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, इन 8 लोगों से कट्टे और 3 नुकीले चाकू बरामद हुए, कुल 7 हथियार बरामद हुए, जाँच चल रही है। और एक जो कथित वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर पूछे सवाल पर योगेश चौधरी ने कहा कि हमें वीडियो देखना है, उसकी सच्चाई देखनी होगी, पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है और 3 कर्मचारियों को नुकीले हथियार से चोटें आई हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की स्थापना 1977 में हुई थी और सरकारी दस्तावेजों की माने तो इसका गठन भारत को एक इस्लामिक देश में बदलने के लिए किया गया था। सिमी पर दुनिया भर के इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ भी गहरे संबंध के आरोप लगते रहे हैं। मैंने BBC संवाददाता सलमान रावी से पूछा कि सिमी की शुरुआत भारत में कैसे हुई।
देखिए रेहान साहब, 1977 में, खास तौर पे 77 के अप्रैल माह में, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नाम का ये एक स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स विंग बनी जो जमात इस्लामी से जुड़ी हुई थी, यानी जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग इसको कहा जाता था। और ये काफ़ी इसका एक्सपेंशन हुआ, काफ़ी प्रभाव था, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम माशरा है उसके बीच में जो सोशल प्रैक्टिस हैं जैसे दहेज या और भी जो मामले हैं उसको लेकर ये लोग काम कर रहे थे। ये शुरुआती दौर में, ये जो अलग होने की जो कहानी है जमात इस्लामी से, अब वो कहानी ये है कि जब आपको याद होगा कि 1981 में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के यासिर अराफात का भारत दौरा हुआ था, तो उस दौरान सिमी के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए थे और उनको कहा था कि ये पश्चिमी देशों के दलाल हैं, स्टूज हैं, और यही कारण था कि जमात इस्लामी से अलहदगी हो गई इस संगठन की। और उसके बाद से फिर जब प्रतिबंध लगा तो ये भूमिगत हो गया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि जब प्रतिबंध हटा भी था, ये 2 साल का पीरियड था जब प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन फिर उसके बाद फिर दोबारा जब प्रतिबंध लगा तो उसको चुनौती दी गई दिल्ली हाई कोर्ट में। 2008 में फिर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त महीने में इस पर से प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रतिबंध लगा दिया।
और लेकिन प्रतिबंध कैसे हुआ?
लगा इन पर?
प्रतिबंध लगा वर्ष 2001 में जब अमेरिका में हमला हुआ 9/11 का, जिसे हमला कहते हैं, उसके बाद सबसे पहले बार इस पर जो है प्रतिबंध लगा, क्योंकि इसके जो आइडियोलॉजी थी कि इस्लामिक राज्य की स्थापना जो है वो उसका सिद्धांत था और एक रेडिकल सोच, एक कट्टरवादी सोच लेकर ये आगे बढ़ रहा था, तो उस फहरिस्त में नाम होने की वजह से इसको उस श्रेणी में डाला गया। और उसके बाद ये प्रतिबंध जो है वो 2 सालों तक चलता रहा, यानी कि 2003 तक ये प्रतिबंध रहा। और इस दौरान ये भी आरोप लगते रहे कि कई इलाकों में इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया, ऐसा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है। और यह है कि जो प्रतिबंध लगा वो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मोकोका या टाडा और यूएपीए जैसे कानून है, इसके तहत जो है इस पर कार्रवाई की गई और प्रतिबंध लगाया गया।
अच्छा, ये बताएं आज की तारीख में सिमी का असर है कुछ इलाकों में, ये कागजी शेर है?
कहा जाता है कि 17 राज्यों में भारत के इसका प्रभाव है, लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्म होने वाली बात तो नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन समय समय पर लोग पकड़े जाते रहे हैं जिनका दावा करती रही है पुलिस के ये सिमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि फिर बाद में वो जिन लोगों को पकड़ कर जिन पर आरोप लगाए गए वो अदालत से बरी भी हो जाते हैं।
ये थे बीबीसी संवाददाता सलमान रवि।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रही इराकी सेना के विशेष दल ने मोसूल शहर पर चढ़ाई के अपने अभियान में फिर से बढ़त बनाई है। सेना ने शहर के पूर्व की तरफ बसे एक गांव पर इराकी झंडा लहराने का दावा किया है और इस बढ़त के बाद इराकी सेनाओं को मोसूल के बाहरी इलाकों से कुछ ही किलोमीटर दूर पर वो पहुंच गए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
धमाकों की ये आवाज़ें मोसूल शहर के आसपास की हैं, जहां इराकी सेना ने शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए जबरदस्त अभियान छेड़ा हुआ है। इराकी सेना ने दावा किया है कि उसने मोसूल से पूर्व की तरफ बसे एक गांव बाजवाया से इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को पीछे धकेलते हुए वहां इराकी झंडा गाड़ दिया है। इराकी सेना के दावे के मुताबिक इस बढ़त के बाद सेना मोसूल शहर के बाहरी हिस्से से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई है। सेना का दावा है कि वह जल्द ही मोसूल शहर पर चढ़ाई कर लेगी। इराकी विशेष सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल वहाब अल सादी ने इस बढ़त के बाद जल्द ही मोसूल पर इराकी सेना का कब्जा हो जाने की उम्मीद जताई है। आतंकवाद विरोधी सेनाएं मोसूल शहर के पूर्वी छोर से लगातार बढ़त बनाती जा रही हैं। ईश्वर की इच्छा रही तो हम आज ही मोसूल को जीत लेंगे। इराकी विशेष सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल वहाब अल सादी के शब्द। इस चढ़ाई के दौरान इराकी सेनाओं को कार बम हमलावरों, मोर्टारों और गोलीबारी से जूझना पड़ा, लेकिन इस्लामिक स्टेट के इन हमलों को नाकाम करते हुए इराकी सेना ने इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को पीछे धकेल दिया और बाजवाया गांव में इराकी झंडा गाड़ दिया। मोसूल इराक में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले शहरों में अब तक बचा आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बड़ा गढ़ है। अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं की ओर से समर्थित इराक और कुर्द सेनाओं ने 15 दिन पहले मोसूल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक विशेष आक्रामक अभियान छेड़ा हुआ है। अमरीकी गठबंधन सेनाओं का अनुमान है कि मोसूल शहर में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की संख्या 3,500 से लेकर 5,000 तक हो सकती है। जैसे जैसे इराकी सेनाएं मोसूल की तरफ बढ़ती जा रही हैं, बताया जा रहा है कि इसके जवाब में इस्लामिक स्टेट भी हमले तेज कर सकता है। मोसूल के करीब के गांवों से ग्रामीणों को इस्लामिक स्टेट द्वारा मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए बंदी बनाए जाने की भी खबरें हैं।
इराकी सेना मोसूल के बिल्कुल निकट। आज सोमवार है, आज का दिन होता है आपके पत्रों का, और आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं वंदना। वंदना का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने आपकी तरफ से खुद ही श्रोताओं को नमस्कार कह दिया। वंदना जी माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है बुरा नहीं मानी होंगी।
नहीं नहीं बिल्कुल।
अच्छा
नहीं।
तो चिट्ठियां फिर आपके हाथ में, पोस्ट कार्ड देख रहा हूँ, शुरुआत लगता है पोस्ट कार्ड से करने वाली हैं आप।
बिल्कुल, पोस्ट कार्ड जो है ये है महावीर स्वामी का। इन्होंने एक नहीं दो दो पोस्ट कार्ड लिखे हैं, और पता
सुंदर लिखावट में भी
पहले
है।
मैं पता बताना चाहती हूँ। डेहरा की ढाणी, ग्राम चूड़ला, सावलपुरा, तवरान, सीकर, राजस्थान।
सीकर राजस्थान से लिख रहे हैं। नाम एक बार इनका और बता दीजिए, महावीर स्वामी इनका नाम
जी
है।
पहले भी लिखते रहे
जी। हाँ बिल्कुल, कहते क्या हैं
जी? इन्होंने कहा है कि दो साल से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और तरीका लाजवाब है, पूरा परिवार साथ बैठकर कार्यक्रम सुनता है, और आजकल ये गोल पहाड़ी से जंग बहादुर सिंह जी के पत्रों को मिस कर रहे हैं।
क्या बात है, देखिए अब ये तो इसमें तो हम कहीं श्रोता से संवाद करें, हम तो बीच में कहीं आते नहीं है। तो गोल पहाड़ी जमशेदपुर के जंग बहादुर सिंह जी, अगर आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो इनकी बात, महावीर स्वामी की बात पर आप थोड़ा गौर फरमाइए।
जी उन्होंने लिखी नहीं बहुत दिनों से।
हाँ देखिए, लेकिन सीकर राजस्थान में बैठ के पूरे परिवार के साथ आपकी आवाज वंदना जी लोग सुन रहे हैं, कितनी बेहतर बात है।
जी तो एक ईमेल ले लेते हैं अब।
जी हाँ।
ये है ज्योतिर्मय SS Damas।
SS Damas
जी, जिला हिसार हरियाणा से।
जी हाँ।
यहाँ से कम चिट्ठियाँ आती हैं हमारे
जी
पास।
हाँ, लेकिन हरियाणा में हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो खामोश रहते हैं, कभी कभी लिखते
सुनते हैं।
जी
ये बोल रहे हैं कि पूरी टीम को दीपावली की शुभकामनाएं, मेरा चौथा पत्र है और मैंने नियम बना लिया है कि महीने में कम से कम एक पत्र बीबीसी के नाम जरूर लिखूंगा।
कितनी खुशी की बात है, अगर आपके पत्रों में हमारे कार्यक्रमों की आलोचना समालोचना हो तो और बेहतर है, अपनी राय जाहिर करें वो और भी बेहतर।
इन्होंने कहा है कि यही दिक्कत है कि लिखे के आलोचना के लिए मिलता नहीं, और फिर हर बार क्या बात लिखे, तो इस बार इन्होंने कहा है कि
ये तो रुकी, ये तो आप जो है हमारे सऊदी अरब के जिद्दा के हमारे जो श्रोता हैं शब्बीर खन्ना साहब, उनसे पूछिए कि आलोचना के लिए बीबीसी में मिलता है या नहीं मिलता है।
लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि क्या लिखा जाए, तो इनका कहना है कि इस बार मैं बीबीसी की सभी महिला साथियों की प्रशंसा करना चाहूंगा।
मैं बाहर हो जाऊं स्टूडियो से।
जी बिल्कुल। इन्होंने पूरा नाम दिए हैं, सुशीला सिंह, वंदना, स्वाति, इंदु पांडे, हरिता, दिव्या, आर्य, तृप्ति आदि, सभी की आवाज और प्रस्तुतिकरण बहुत खूबसूरत होता है।
यहीं पर इनका नाम फिर से बताइए, क्योंकि ये तो बहुत ही कमाल की चिट्ठी है, और आप सभी लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। जाहिर है
ज्योतिर्मय इनका नाम है।
ज्योतिर्मय जी हिसार से लिख रहे हैं।
जी
बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिर्मय जी। अब इस आपकी चिट्ठी का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वंदना आप ही बताइए आपको कैसा महसूस
जी
हो
बिल्कुल
रहा?
इसलिए मैं कई बार ऐसा कहती हूँ कि एक तो कि जो हमारे महिला श्रोता बहुत कम होते हैं, और ये भी जाहिर सी बात है कि जो प्रस्तुत करता है जो महिला स्टाफ है वो भी कमोबेश कम होता है, तो इन्होंने
सुशीला होती है।
लेकिन जो अनुपात है,
कांडपाल है, आप रेडियो पे आती है, लेकिन हाँ अनुपात जो है वो उतना नहीं है,
तो इन्होंने बाकायदा इस चीज को चुना, तो हमें बिल्कुल बहुत हमारी तरफ से डबल धन्यवाद
दी। बिल्कुल अब बताइए और क्या चिट्ठियां
जी। इनकी एक ईमेल आया है राहुल कुमार भागलपुर बिहार से। इनका कहना है कि दिन भर में अजय देवगन से मुलाकात बहुत अफसोसजनक रही, आपसे और रेहान फजल से इन्होंने सवाल पूछा है कि एक भी सवाल अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो मतलब के क्यों नहीं पूछे गए, यदि फिल्म प्रमोशन ही करवाना है तो शायद आप उद्देश्य से भटक रहे हैं, बीबीसी की पहचान उसकी रिपोर्टिंग है।
भागलपुर से बिहार से राहुल कुमार जी, आपने उस श्रोता की भूमिका निभाई है जो सिर्फ श्रोता ही नहीं है, हमारे कार्यक्रमों का जज भी है, यानी न्यायमूर्ति की भूमिका आपने इस वक्त निभाई है, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आपने जो कुछ कहा है वो गलत है, आपकी ये राय है, और हमको जब श्रोताओं से इस तरह का फीडबैक मिलता है, चिट्ठियां मिलती हैं, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, जो काम हम कर रहे हैं उसमें अभी सुधार की गुंजाइश बहुत है। हो सकता है जो आपने इंटरव्यू सुना उसमें उन तमाम सवालों को ना पूछा गया रहा हो जो उम्मीद आप हमसे कर रहे थे, लेकिन हमेशा अगली बार एक मौका तो होता ही है, तो एक मौका और दें हमें।
जी बिल्कुल, और काफी सारी चिट्ठियां हैं और जो पत्र हैं वो आए हैं विवेचना को लेकर, जो रेहान फजल की
हमेशा आते ही हैं।
जो सांसद थे भूपेश गुप्त उनके ऊपर भी, और बेगम अख्तर
पे दो विवेचना अभी रेहान फजल ने की हैं, सीपीआई के भूपेश गुप्त और
बड़े कद्दावर नेता थे, तो इन दोनों पर काफी सारी जो हैं लोगों ने तारीफ की चिट्ठियां लिखी हैं। जिशान नैयर हैं बेगूसराय बिहार से, इन्हें भी अच्छी लगी विवेचना, लेकिन इनकी शिकायत है कि जो सुनाई नहीं देता शॉर्ट वेव पर, खासकर 30 अक्टूबर का कार्यक्रम, उन्होंने कहा कि बड़ी परेशानी हुई इनको सुनने में, बाद पर मोबाइल ऐप पर जाकर इनको सुनना पड़ा।
हाँ, मोबाइल पे तो इंटरनेट पे तो आप बहुत ही साफ साफ सुन सकते हैं। और जीशान नैयर की ये चिट्ठी है। जीशान नैयर हमारे वो श्रोता हैं जो मुझे लगता है 24 में से 18 घंटे फेसबुक पे बिताते होंगे और हमको लगातार संदेश भेजते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, मुझे लगता है कि इंटरनेट पे बहुत साफ साफ आवाज में हमारे चारों कार्यक्रम सुन सकते हैं।
जी,
एक चिट्ठी मैं देख रहा हूँ कि वहां पर रखी हुई है, ये सबसे दबी हुई, इस चिट्ठी को निकालिए, क्योंकि ये चिट्ठी लिखने वाले हमें SMS लिखते हैं, हमें फोन करते हैं कि मेरी चिट्ठी शामिल क्यों नहीं हुई और मेरे खिलाफ क्या साजिश हो रही है बीबीसी में।
प्रमोद
कुमार श्रीवास्तव, कैथनपुरवा अमेठी से।
लेकिन इस बार इन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी लिखी है और थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं
आ रहा है मुझे लगता है, इसलिए
इन्होंने कुछ बहुत निजी अनुभव बांटे हैं।
हाँ, हम सिर्फ यही कह सकते हैं प्रमोद जी कि आपने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और हमारे साथ अपनी निजी चीजें कुछ साझा करने की कोशिश की है, तो ये ठीक है, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में आप जब लिखेंगे तो हम उसको शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
जी।
मुझे लगता है कि अब समय समाप्त हुआ।
बिल्कुल समय नहीं है
इसलिए क्षमा मांगता हूँ उन श्रोताओं से जिनकी चिट्ठियां इस बार हम शामिल नहीं कर पाए हैं। और साथ ही पता बताता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
आपकी चिट्ठियों के साथ थे राजेश जोशी और वंदना। जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में दो दो हाथ करेगी। बांग्लादेश ने कल इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में मात दी और सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त की। क्रिकेट समीक्षक मानते हैं कि अब जीत के लिए घरेलू पिचों को हथियार बनाया जा रहा है। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
कल मेजबान बांग्लादेश ने मीरपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को तीसरे ही दिन 108 रन से हरा दिया। इससे पहले चिटगांव में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश को 22 रन से हराया। दूसरे टेस्ट मैच का फैसला भले ही कहने को पांचवें दिन हुआ, लेकिन पांचवें दिन तो इंग्लैंड ने केवल 3 ओवर 3 गेंद की और बांग्लादेश के बचे हुए 2 विकेट झटक कर जीत की राह पकड़ी। दोनों ही टेस्ट मैच में कोई भी टीम एक बार भी 300 का आंकड़ा नहीं छू सकी। दोनों टेस्ट मैच में केवल 1 शतक बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने लगाया जब उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 104 रन बनाए। अपना दूसरा ही टेस्ट मैच खेलते हुए बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने दूसरे टेस्ट मैच में 12 और अपने पहले टेस्ट मैच में 7 विकेट अपने नाम किए। दूसरी तरफ इंग्लैंड के अनुभवी ऑफ स्पिनर मोइन अली ने भी 2 मैचों में 11 विकेट झटके। अब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आने वाली है जहां वो 5 टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के अलावा 3 20-20 मुकाबले भी खेलेगी। अब बांग्लादेश ने पहली बार इंग्लैंड को हराया तो उससे जीत का श्रेय छीना नहीं जा सकता, लेकिन क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन को लगता है कि अब बांग्लादेश भी विरोधी टीमों को घरेलू विकेट देने के मामले में भारत की राह पर चल पड़ा है।
मैं मैच देख रहा था, 100 रन पे 9 लॉस थे और जब मैंने दोबारा टीवी खोला तो उनकी 9 विकेट गिर चुकी थी। विकेट बॉल बाउंस लो रह रही थी, टर्न कर रही थी और बांग्लादेश भी वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जो हिंदुस्तान में विरोधी टीमों के खिलाफ कर रहा है। ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल इंग्लैंड के लिए सेटबैक भी हो सकता है और अगर आप इसको इस ढंग से भी सोच सकते हैं कि इंग्लैंड अब 2 टेस्ट ऐसी विकेटों पे खेल के हिंदुस्तान आ रहा है जो कि भले ही बिल्कुल इंडिया जैसी ना हो लेकिन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है।
टेस्ट सीरीज में भारत की कमान विराट कोहली के हाथों में होगी। पहले दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद न्यूजीलैंड को अपने घर में हराने के बाद जीत का स्वाद देने वाली विकेट का मिजाज शायद वो भी ना बदल सके।
आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश की भोपाल जेल से आज तड़के भागे सीमी से जुड़े 8 कैदियों को पुलिस ने शहर के बाहर एक कथित मुठभेड़ में मार दिया। तुर्की में पुलिस ने सरकार की आलोचक और देश के बड़े अखबार जमहूरियत के प्रमुख संपादक मूरत साबुनकू और कम से कम 12 वरिष्ठ कर्मचारियों को चरमपंथ के आरोप में हिरासत में लिया है। मध्य इटली में रविवार को आए भूकंप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। नागरिक सहायता अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अब तक 40,000 लोगों को राहत पहुंचाई है। इराकी शहर मोसुल में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से लड़ाई लड़ रही इराकी सेनाएं शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।